पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
कबीर परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है और मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। मेरी महिमा का गुणगान चारों वेद कर रहे हैं कबीर की महिमा का, लेकिन जिस वेद से यानी सूक्ष्म वेद से जो परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख से जो वाणी बोली है वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कहा गया है भगवान का ध्यात्म ज्ञान। तो कहते हैं वो ज्ञान जो है उसको वेदों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, पर सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में वो वेद है, वो ज्ञान है। कबीर जी कहते हैं कि वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब परमेश्वर ने कहा कि आप यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक को देखो स्वामी जी, आप परमात्मा को निराकार बताते हो और 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, 5वें अध्याय के 8वें और 6वें श्लोक में आप परमात्मा को सहशरीर पाओगे। उसमें लिखा है कि वो सहशरीर है और वो कबीर है जो बंधन काट देता है, पापों का नाश कर सकता है। अपना आत्मा वेद में जहां पर भी कबीर शब्द है वो कबीर देव का बोधक है। देव माने परमेश्वर और कबीर माने वो कबीर जो बनारस में आया था जुलाहा बनके। कबीर साहब कहो चाहे कबीर देव कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीरन कहो, ये भाषा भिन्न होने से ये नाम अपने अपनी भाषा में थोड़े से परिवर्तन कर जाते हैं, बाकी परमात्मा एक ही वही है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में आपको दिखाते हैं यही यजुर्वेद, यजुर्वेद और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है, वही है जो अभी आपको दिखा रहे थे। इसके 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं, 5वां अध्याय और यजुर्वेद, ये 32वां मंत्र हम पढ़ते हैं 32वां। इसमें लिखा है उसी गसी हम वह को बै बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ऐसे संतों ने वह को बै बोला है, ये कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर अंगारी असी और बम भारी अवैसुरसी। अब यहां देखो इन्हीं के शब्दों में सवर ज्योति रित धामासी, रित धामासी सम्राट असी, ये देखना हे जगदीश्वर जिस कारण से आप कांतिमान हैं, अंगहारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये देखो अंगहारी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, यानी पापों के शत्रु, पाप नाशक हैं आप, इसका अर्थ ये बनता है। फिर भी इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ इन्होंने ये बना लिया अपनी व्याकरण अनुसार, ये कवि शब्द के लिख दिया इन्होंने, इसका अर्थ कर दिया कांत परजय असी माने हैं, इसका अर्थ कर दिया कवि का कांत परजय। ये कवि का अर्थ नहीं करना चाहिए था, लिखना था कबीर देव। जैसे इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में ये देखिएगा, इसी दानंद ने 3600 अध्याय 36वां अध्याय है, यहां देखना ये है, ये 3600 अध्याय आरंभ 36वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है। तो यहां यजु का अर्थ है यजुर्वेद से संबंधित है यह प्रकरण, तो इसने यहां ठीक किया है सिद्धानंद ने, यजु जहां लिखा था यजु, इसको इसने यजुर्वेद को लिखा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है और इसका अर्थ यजुर्वेद ना करके इसकी यहां पर अर्थ कर दिया था यजु का, यजु माने यज्ञ सतुतियां, तो यज्ञ सतुतियां लिख देता तो यजुर्वेद को नहीं ढूंढ सकते, यहां यजुर्वेद के प्रकरण है तो यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, क्योंकि केवल यजु लिखा था तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही जहां पर ये कवि लिख रहे हैं, क्योंकि यह महिमा कबीर देव की बोली जा रही है, अब हम 32वें पर आगे 5वें अध्याय, वो 36वें का अपने पहला पढ़ा था, ये 5वां अध्याय और 32वां श्लोक, इसमें लिखा है ये कवि इसका, इन्होंने इस कबीर का अर्थ कबीर अंगहारी असी बंभारी असी ये कर दिया, योडंगा कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव हैं, कबीर देव लिखना था यहां पर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह अकबर, वो कबीर देव हैं, हम उसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर हम कबीर कहने लगे, वेद उसे कबीर देव कहते हैं, वो कबीर देव हैं। बंभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बंधन के शत्रु, बंदी छोड़ बंधन काटनिए, कर्मों के बंधन से मुक्त करने वाले, और अंगारी माने पाप के शत्रु यानी पाप नाशक, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, इन्होंने व्याकरण बदल रखी है अपने अज्ञान, अंगहारी माने पापों के शत्रु और बमहारी माने बंधन के शत्रु यानी बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं जो हमारे बंधनों से छुड़वा दे सिंपल लैंग्वेज में, और रित धामा सतधाम युक्त हैं, रित धामा यानी सतलोक में रहते हो आप, रित धाम सतधाम कहो सतलोक कहो, आप सतलोक में रहते हैं, सवर ज्योति है अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, नहीं सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहते हो, सतलोक भी स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा भी तेज पुंज के शरीर युक्त है। तो अब यहां इसने क्या कर रखा है, बंभारी माने बंधनों के शत्रु, वंगहारी माने खोटे चलन के शत्रु, कबीर वाक कांत परजय के मतलब इसका, हे परमात्मा आप कबीर अंगहारी असी यानी कबीर देव जो है वो पापों का शत्रु है, बंभारी माने बंधनों का शत्रु है, वो बंदी छोड़ है, और वो रित धामा सवर ज्योति और सतलोक में रहता, रित माने सत, धाम माने धाम लोक, सतलोक में रहता है, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है। आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं ऋग्वेद में, और थोड़ा सा प्रकरण देकर फिर इस कथा को पूरा करते हैं, ये अमर कथा है, देखिएगा ऋग्वेद 9-10 मंडल इकट्ठा किया है अनुवाद, और ये इन आर्य समाज वालों का ही अनुवाद है, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये यहां से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से छपी है। अब इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में, इसमें क्या लिखा है, कि वो परमात्मा संकट निवारण करता है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी सत साधना करने वाले यजमान वाले भक्तों के लिए भगवान सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को नाश करता है, मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव है। यहां फिर ने सर्वज्ञ लिख दिया, कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता और ना कांतिमान होता, कबीर देव लिखना था। वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी आकाशीय बिजली की तरह वर्णीय पुरुष को शीघ्रता के साथ, जैसे आकाश की बिजली एक पल में नीचे आ जाती है, वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है, आकर मिलता है। अब 27वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 हम पढ़ रहे हैं, 26 पढ़ लिया हमने। ये देखना जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है, एक स्थान पर रहता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 1, 2, 3 ये और क्लियर करेगा वो परमात्मा कैसा है, साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 का ये मंत्र नीचे एक, ये एक मंत्र है। जो स्रोत्पादक प्रभु यानी सबका जनक, सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रभु परमात्मा प्रकाश रूप है यानी तेजो में शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, पाप नाशक, वह राजेव राजा के समान, राजा के समान, ये 269 पर हम पढ़ रहे हैं, 270 पर 9 के 82 का हम पहला मंत्र पढ़ रहे हैं, 270 पर के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने योग्य है वो सबका सरदार रूप में, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, ओह अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती, जैसे बिजली काशी के पात्र पर गिरती है आकर के, तो ऐसे जिस पर वो अट्रैक्ट होता है बिजली उसी पर आता है, ऐसे ही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, अब दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया, अब ये दूसरा देखो। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, वहां से चलकर आते हो तीसरे मुक्ति धाम से, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप सर्वज्ञ नहीं, आप कबीर देव हैं, यहां लिखना था कबीर देव, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे। अपुण्यात्माओं परमात्मा कहा करते, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। जिस वेद में, जिस तत्व ज्ञान में परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि है वो इन वेदों में नहीं है, लेकिन ये चारों वेद कबीर परमात्मा की ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि वो समर्थ शक्ति है, वो पाप नाशक है और वो बंदी छोड़ है, काल के बंध से छुड़वा कर सतलोक ले जाने वाला है और वही पूजा के योग्य है। अब इस बात को रामानंद जी के सामने परमात्मा ने कहा, स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित ने वेदों को देखा, स्वीकार किया कि आप सही कह रहे हो, हमारी तो बुद्धि खत्म कर रखी थी इस काल ने, हमें तो वेदों का कह खै भी पता नहीं था। वो भी ब्राह्मण था, उसने बात को स्वीकारा और इस बात का असर हुआ उस पर जो दुखी आत्मा था, छोटी उम्र के थे परमात्मा उसमें लीला कर रहे थे, और एक दुल्हा जाति में और इस रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए तो वो पुण्य आत्मा जो ब्राह्मण दुखी था वो प्रभावित हुआ। तो फिर रामानंद ने संकेत कर दिया भाई इनसे पूछ लो, यही आपका कल्याण कर सकते, मेरे बस का नहीं। तब परमात्मा ने कहा कि इन वेदों के ज्ञान से मेरी जानकारी तो हो सकती है लेकिन मेरे पाने का विधि इसमें नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दीक्षा दूंगा, मेरा नाम ले मेरे से, और नाम लेने के बाद कोई तुझे ये कहेगा तू ब्राह्मण होकर के दुल्हे से नाम ले लिया, तेरे मन में हीन भावना आ गई, तेरा दूना कैर टूट जाएगा तेरे घर, या तो नाम मत ले। तो वो दुखी हो रहा था, न बोला जी मैं तो कभी मरा पड़ा हूं और मेरा उद्धार करो मेरे मालिक, नाम ले लिया। अब जैसे आपको कनेक्शन मिल गया बिजली का, आपके पंखे मोटर ठीक है तो डूंडा ठा देगा, तो आप अपने आप को साफ सोच रखो मालिक के आने के लिए, उसमें बाधा मत बनने दो, किसी देवी देवता को आगे मत अड़ने दो, उसने कदे छोड़ दे, वो हानि कर दे, फलान कर दे, उन्होंने तो देही तोड़ रखी हमारी, सब पता आपको कितना सुख दे रखा उन्होंने, और ना वो दे सकते आपको दुख भी नहीं दे सकते, वो सुख भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपके प्रारब्ध में जो लिखा वही दे सकते हैं, और ये समर्थ परमात्मा आपके प्रारब्ध में पाप को नाश कर सकता है। अभी कुछ दिनों में कल्याण हो गया उस ब्राह्मण का, दुखी का, यानी और भी अन्य सभी जातियां परमात्मा से प्रभावित हुई, सुखी हुई, गुणगान करने लगे, तो उसमें कौन पीछे रहेगा जब पता लग गया हमारा ही कल्याण इससे होना है। तो वो बहुत सुखी हो गया, सारा परिवार ने दीक्षा ले ली, और पहले बड़ा दारिद्र टोटे के अंदर दुखी था, निर्धन बहुत हो गया था, कर्जा हो गया था, परमात्मा समर्थ शक्ति जो चाहे सो कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में उनके सब दुख निवारण हो गए और पशुपालन का काम शुरू कर दिया, कुछ ही दिनों में सारे ठाठ कर दिए, पैसा भी कर्जा भी उतर गया। अब वो इतना सुखी हो गया, जहां जा रहा वहीं गुण गावे कि भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं, सब जो भी उसके संपर्क में कोई रिश्तेदार नाती वैसे कोई मित्र, तो वही आता है परमात्मा के पास जिसके पुण्य अधिक होते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अब परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को जो काल ने किसी मर्यादा में बांध दी उसको लेने के लिए शरण में कैसी कृपा करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो कबीर परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करके रामानंद जी का शिष्य था उसको छोड़कर परमेश्वर कबीर जी से उपदेश प्राप्त करके सुखी हो गया था, अब वो कुदरती किसी काम वश उनका रिश्तेदार भी था शारदा का, वो पहुंच गया वहां पर। अब उसने जाकर कहा शारदा से, कुशल मंगल पूछा और पूछा मिश्राणी तू तो बहुत कमजोर होगी, क्या बात है। तो शारदा ने कहा कि क्या बताऊं नाती रिश्तेदार, मैं ऐसे ऐसे बहुत दुखी हूं, वर्षों से भटक रही हूं। और शारदा को यह भी पता था कि ये भी महादुखी थे, क्योंकि रिश्तेदारी की जानकारी होती है। फिर उसने पूछा शारदा ने कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम भी बहुत दुखी थे, कई बार इकट्ठे ही कहीं एक स्थान पर जंतर मंतर के लिए जाते थे। तब उस व्यक्ति ने परमात्मा के शिष्य ने कबीर जी के शिष्य ने कहा कि शारदा हमें तो भगवान मिल गए। कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आपा बताते हुए क्या कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए ना जाने कहां कहां भटक रहे थे, और परमात्मा जैसे संत मिल गए उनसे उपदेश लेते ही सब सुख हो गए हमारे, तो भगवान जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो कहते हैं उसको फिर राम कहूं या संत कहूं। शारदा ने सोचा भी ठीक, ये तो बहुत दुखी थे, ये भी ठीक हो गए, कहां से कैसे जंतर मंतर लगा तुम्हारा, शारदा ने पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने गुरु बना दिया, वो गुरु परमात्मा ही आए हुए हैं, और शारदा आप भी उन्हीं से उपदेश ले दीक्षा ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब शारदा ने सोचा भी आज बात बनेगी कि ये तो ब्राह्मण है, और हमारा रिश्तेदार भी है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा, साधु संत ऋषि बनाया होगा गुरु। तो उसने पूछा कौन है आपके गुरुजी, शारदा ने पूछा। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मेरे गुरुजी हैं पूज्य कबीर देव जी, कबीर साहब। अब शारदा का फिर वही झटका सा लगा, करंट सा, कि वही कबीर जुलाहा कबीर। अब वो कहने लगा उनका रिश्तेदार परमात्मा का दृश्यस्थ था कि शारदा संत की जात नहीं देखनी चाहिए, उनके गुण देखो, वो परमात्मा आए हैं। अब सुन ले बात मेरी। तो उसको दिकारने लगी वो कि तूने क्या नाक कटवा दी, रिश्तेदार तने एक सुंदर से नाम ले लिया, ब्राह्मण तो जगत के गुरु हैं। अब वो कहने लगा पंडितानी इब तेरी बात का असर मेरा ना हो, मेरी तो ब्रह्मवाटी हो रही थी ब्राह्मणों का, मेरी वो दुर्गति थी धरती पर किसी के नहीं, कौन से ब्राह्मण ना इस जगत के गुरु होकर के, और सांस साबित आवनी था यार, इतना कर्जा हो गया था, मरने को दिल कर रहा था, सुसाइड करने की सोच रहा था मैं, राज उस परम पिता की कृपा से मैं सुखी हो गया, राज उसको तू धिकार रही है, लानत है तेरी जुबान को, नाराज हो गया वो। और क्या दिया इस ब्राह्मण समाज ने मेरे को, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए थे, किसी दे 2 रुपये ले रखे थे, दोबारा जाता था तो दरवाजा बंद कर लेते थे, बात भी ढंग से नहीं करते थे, और आज मेरे पास 10 रुपये हैं वो मांगने आते मेरे पास इस परमेश्वर की कृपा से, और तेरा मनमानत नाम ले लिए, आगे गुरु जी के बारे में गलत नहीं सुनूंगा, मैं उठकर चल पड़ा। अब शारदा ने सोचा भाई कैसा के कमाल हो गया, जो भी सुना है वो इन्हों का है, मैं भी सुखी हो गया, मेरा भी लाभ हो गया। अरिया कुल की मर्यादा, ये बंधन काल ने इसी बेड़ी बांध दिया, टूटे को नहीं, फिर भी बरता क्या नहीं करता। शारदा ने सोची भाई कति अंत आ लिया मेरा तय। अब उसने ये मन में ठान ली कि कभी आसपास कोई सत्संग उस संत का होगा तो मैं पहले परीक्षा लूंगी, और परीक्षा में अगर मुझे कुछ राहत मिली तो नाम ले लूंगी, ना तो वापस आ जाऊं। अब कहते हैं परमात्मा अंतर्यामी सारी जानते हैं, जिस आत्मा को शरण में लेना ही लेना है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसी के पड़ोस में किसी गरीब के यहां सत्संग रख दिया भगवान ने। आसपास सभी के घर निमंत्रण दिया जाता है कि हमारे यहां सत्संग होगा, हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो, ज्ञान सुनना, सत्संग सुनना। शारदा को पता चला कि कौन गुरु आ रहे हैं, कि कबीर गुरु आ रहे हैं, परमेश्वर कबीर गुरु आ रहे हैं। उसने सोची अब बड़ी बात, आज रात्रि के समय का सत्संग होता था, शारदा ने सोचा कि मैं पल्ला करके मुंह पर घूंघट काट के जाऊंगी, और यदि मुझे आशीर्वाद देते ही मैं ठीक होगी तो नाम ले लूंगी, ना तो वापस आ जाऊंगी, मैं किसी के पहचान में नहीं आऊंगी, कौन है ये। शाम का समय था, सत्संग की तैयारी होगी, एक जोत जगा करते थे भगवान के सत्संग में, खड़ी जोत, अमर जोत, वही रोशनी का भी काम करती थी और हवन का काम भी करती थी, हवन यज्ञ का, दीपक का काम भी वही करती थी। तो सभी श्रोता आ रहे थे, परमात्मा कबीर जी सामने आसन पर विराजमान थे, प्रणाम कर रहे थे, अपना अपना स्त्री पुरुष अलग अलग स्थान ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा आई घूंघट काट गया, ऊपर पल्ला करके पूरा मुंह ढक के, और सबके पीछे 5-7 औरतों के झुंड में मिलकर ऐसे ऐसे चरणों में सिर रखा, परमात्मा के जैसे अन्य रख रहे थे। परमेश्वर ने उसके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद भरा, जैसे सबके रख रहे थे। उसी समय शारदा के शरीर से जैसे कोई ऐसी वस्तु निकल गई जो उसे परेशान कर रही थी, यानी वो पाप कट गया, एकदम शरीर हल्का फुल्का हो गया, और समझ गई कि सचमुच ये तो भगवान है। उसी समय परमेश्वर ने उन्हीं क्षणों में कहा कि हे सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी, आज दानक के पास क्यों आ गई, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, आई तो वह न्योथी कोई पहचाना नहीं गा, और परमात्मा अंतर्यामी कहां सब छुपाएंगे हम मूर्ख, तो उसी समय उसने पल्ला फेंक दिया ऊपर से और चरण पकड़ दिए, भगवान माफ कर दो मुझे पापण को, परमात्मा मैं बहुत नीच थी, इसी कारण से कष्ट पा रही थी, मैं आपकी निंदक हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। परमात्मा बोले बैठ जा, यू तो एक रोग कट्या है तेरा, और जीवन में तो बहुत संकट है, और अगले जन्मों का तो पता नहीं, तुझे बाहर भर रखा बहुत गणा, अब सारे पाप कटेंगे एक एक नहीं। फिर जब आदमी को ऐसा सुख हो जाता है, फिर वो बैठ कर सत्संग भी सुनता है, आनंद भी आता है, और संत की पूरी सब बातों पर विश्वास भी दृढ़ होता चला जाता है। फिर परमात्मा ने फिर सत्संग सुनाया उस रात्रि में, कोटि जन्म तन भर मत हो गे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षकों के दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधूर तनागर। परमात्मा अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि तू सुख के सागर चल, और यहां तो तूने असंग जन्म हो गए भटकते और भ्रमते को, सुख का सागर किसे कहते हैं उसको डिफाइन किया है, संखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जिस लोक में जिस स्थान पर जहां आप जाओगे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परम शांति कैसी है, संखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जैसे कभी कभी एकांत में बैठे हो, आत्मा में एक ऐसी हिलोर उठती है, वो लहर आती है, कोई भी बुरा सा नहीं लगता, सबके प्रति मेहर भर जाती है, दया भर जाती है, लेकिन वो होती है थोड़ी सी देर की, उसके बाद फिर कैर टूट जाते हैं, वो ऐसा करना था वैसा करना था, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसा कैसे हो गया, फलाना हानि होगी, वो लाभ हो गया, तो वो कैर की लहर आ गई, और वो थी मेहर की लहर। तो कहते हैं उस सतलोक के अंदर ऐसी लहर, संखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। तो सुख सागर में चलने को कहते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत हो गे कुछ ना हाथ लग्या रे, कोट जन्म तन भर मत हो गे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खर भया बोरे कौआ हंस बुगारे, मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षकों का दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण रासा, मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तू फिर भी उल्टा आया, मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध महल मठ बोरे बोर ना दे धोरे, मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भीष्ट सभी तें देखे राजपाट के रसिया, दोजक भीष्ट सभी तें देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया, मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधूरत नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। चल हमसा उस लोक पठाऊ जो आदि अमर अस्थाना, मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, मन तू चल रे सुके सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब ये गरीबदास महाराज जी को परमात्मा मिले थे अपने उस गुण के अनुसार, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1-2-3 में कि वो परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है, वहां से गति करके आता है और पुण्य आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माओं को दृढ़ भक्तों को मिलता है। उनमें से दृढ़ भक्तों में से गरीबदास साहिब जी हुए हैं छुड़ानी वाले, तो उनको परमात्मा ने अपना यो ज्ञान दिया, उन्होंने फिर जो ज्ञान बताया वो दास आपको बता रहा है। ऐसा ही ज्ञान परमेश्वर ने उस सत्संग में सुनाया, जैसे आपको सत्संग में सुबह बताया था कि ब्रह्म विष्णु महेश नाशवान है, ब्रह्म भी नाशवान है और ये सरपुरुष जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष भी नाशवान है, वो परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष वो है अविनाशी परमात्मा, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और 16-17 में जिसका वर्णन है तीनों का, वो मूल रूपी परमात्मा। अब इसमें क्या बताया है कि भाई कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना और मिटी ना मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण रासा। ये लंबा प्रकरण है, हम थोड़ा प्रसंग दूसरा चल गया। पहले तो पुणात्माओं जिसका काटा निकल जाएगा उसको फिर सारी बात सुहाया करें, तो शारदा ने सारी बात समझ ली, 2-3 सत्संग लगातार सुने, परमात्मा का काफी संग किया, जहां भी सत्संग होता वहां पहुंच जाती थी। अब उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये संत जो वचन कह रहे हैं वो सारी सत्य है, क्योंकि वो वेदों पुराणों से भी परिचित थी और परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है और इन्हीं की स्टीम लिखा है, देवी भागवत में प्रमाण है, 3 स्कंद के 123 पृष्ठ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ब्रह्म परब्रह्म क्या तो उन्हें पता ही नहीं था, फिर वो सारी साची लागे जब प्रमाणित हो गया। उसके बाद शारदा ने अपने पुत्र सर्वानंद को कई बार समझाने की चेष्टा की, बेटा तेरे को वेद ज्ञान नहीं है। अब सर्वानंद हंसकर टाल जाता है, माता जी आपको क्या पता, आपने बड़ा विद्वान पुरुष हो, सबको पराजित कर दिया है। तो एक दिन सर्वानंद के मन में क्या इच्छा हुई, यानी सर्वानंद अपनी माँ की बातों को टाल देता था, उसको नाराज भी नहीं करता था और ये भी नहीं पूछा कभी कि तेरा गुरु कौन है। ये कहती रहती थी बेटा तू उपदेश ले ले, मैं ठीक होगी, मैं स्वस्थ होगी, बड़े संत आए हैं, परमात्मा है, लेकिन वो टाल जाता था। और शारदा बड़ी दुखी होती थी, देख काल के मुंह में जा गए मेरा लड़का, बड़ा फिर विद्वान, चारों वेद गोट लिए और कह कह का पता नहीं इनको वेदों में लिखा क्या है, गोटने से थोड़ा इसमें क्या लिखा है समझना चाहिए, नहीं मान रहा था। एक दिन सर्वानंद के मन में आया कि मैंने सभी अपने साथ के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया, मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवा लेता हूं अपनी मां से कह करके। तो सबको ये पता लग जाएगा, सर्वजीत माने सबको जीता हुआ, यानी सब पर विजयी। एक दिन उसने अपनी माता से कहा, सर्वानंद ने, कि माताजी मेरा नाम आप सर्वजीत रख दो, मेरा नाम बदल दो, चेंज कर दो। मां ने कहा, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ये भी तो बहुत अच्छा नाम है। तब उसने बताया कि माताजी मैंने सब विद्वानों को पराजित कर दिया है, सब पर विजय पाली है, और मैं चाहता हूं मेरा नाम सर्वजीत रख दो, सब ने पता लग जाए कि ये है वो सर्वजीत जिसने सबको जीत लिया। तो उसकी माता कहने लगी, बेटा तू मेरे गुरु को पराजित कर दे, मैं तेरे को सर्वजीत नाम रख दूंगी बेटा, नहीं तो मैं तो ना रखूं तेरा नाम सर्वजीत। उसने पूछा, कौन है आपका गुरु? कि वो कबीर, परमेश्वर कबीर देव, कबीर जी। के माता जी कौन कबीर? वो धानक दुल्हा, क्योंकि कबीर साहब उनसे भी टकराते रहते थे। अरे माता, वो तो अशिक्षित है, वो क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, उसको तो अभी गया, अभी आया, अभी पराजित कर देता हूं। अब सर्वानंद जी लेकर बैलों के ऊपर पूरे सब सदग्रंथ रखा करता था, सारे पुराण वेद गीता सब लेकर चल पड़ा। आगे दुल्हाओं की कॉलोनी में पहुंचा, वहां एक लड़की जो मृतक जीवित की थी परमात्मा ने, वो अपनी बेटी के रूप में रखी थी, कमाली। वो लड़की 15-16 वर्ष की थी, कुएं पर जल भर रही थी, दोपहर का समय था, जून का महीना, उत्तर प्रदेश। और ब्राह्मण जी जा रहा शिखर दोपहर में। अब वहां परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, उसके प्यास कसूती ला दी, जबरदस्त प्यास लगा दी सर्वानंद को। और उधर से ब्राह्मण 5 मिनट जल ना मिले तो प्राण पखेरे उड़ जाए, ऐसी स्थिति आ गई। सामने लड़की जल निकाल रही थी दानकों के कुएं से, कहने लगे, बेटी जल पिलाना, जान निकली जा रही है। उस कमाली ने बाल्टी लाकर उसकी तरफ कर दी, उसने ऐसे करके सर्वानंद ने जल पी लिया। अब जल पी लिया, जब सोचा तो दानकों का कुआ था, दुल्हाओं का, कहीं कोई देखता तो नहीं है, तो ये ब्राह्मण शूद्रों के कुएं का पानी पी लिया। अब दुल्हाओं की कॉलोनी में विद्वान पंडित आ जा, सभी देखने निकल जाते, अपने घरों से बाहर देख रहे थे, ये कैसे आ गया, जैसे गांव में हाथी आ जाए, अगर सब देखा करो खड़े होकर, तो ऐसे देख रहे सभी दुल्हाओं की कॉलोनी वाले, सभी अपने झोपड़ियों से निकलकर। उसने देखा तो इज्जत का नाश हो गया, तो कहता है, लड़की ये किसका कुआ था, कौन सी जाति का है? तो कमाली ने कहा, श्रीमान जी जुलाहों की कॉलोनी में पंडितों का धो नहीं सकता, जुलाहों की कॉलोनी में जुलाहों का कुआ होता है, ए लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? लड़की ने बोली, पेट भर गया, तेरा ही बात आ गई पंडित जी, तेरे पहले क्यों ना पूछा, जब जानती तू कैसा पंडित है, तेरी जान निकलने वाली थी तो जान गया कि तेरी तो कोई नहीं बात बनी। कहने लगे, लड़की यहां कबीर का घर कहाँ है बेटी, तुझे मालूम है? वो जानगी कि मेरे पिताजी से मुंह बोले पिताजी थे परमात्मा कबीर जी, उस लड़की के वचन से जीवित कर रखी थी वह बेटी, वचन की बेटी थी। वो लड़की ने सोचा है भी वो खसेगा मेरे पिताजी के साथ जाके। कहने लगी, ठीक है आजा पंडित जी मेरे साथ साथ आजा, मैं आपको कबीर जी का घर बता दूंगी। अब पंडित जी चल पड़े, लड़की जल्दी जल्दी जाके अंदर पहुंच गई और जाके कहा, पिताजी ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण आ रहा है, आपको पूछ रहा है, और बैलों के ऊपर ना सारे शास्त्र रख रहा है, लगता है आपके साथ कोई वाद विवाद करने आया है। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, बोले आओ, अगर अपने घर आता है तो लाओ आदर के साथ। वो लड़की वापस गई मटका उतार के, तो सर्वानंद सामने खड़ा, बाहर बैल लिए और कहा कि लड़की क्या कबीर का घर यही है? कहा जी, कबीर जी का परमेश्वर का घर यही है, आ जाओ ब्राह्मण अंदर बैठे, भगवान अंदर बैठे। सर्वानंद ने कहा कि लड़की बात सुन, ले मेरा एक लोटा है, लोटा ले रखा उसने पीतल का, इस लोटे को जल से भर दे। वो लड़की लाई अंदर से लोटा, उठा गया अपना बड्डा और उसको ला करके उसमें डालना शुरू किया। कहने लगा और डाल दे और डाल दे, कति फुल करा लिया ऊपर तक, बिल्कुल और फलो न हो गया, इतना भरवा लिया उसमें, और कोई बूंद पानी पड़े तो बाहर निकल जाए, ऐसा कर दिया। और कहा इस लोटे को ले जाकर लड़की कबीर को दे दे, परमेश्वर कबीर जी को दे दे, और उसको कहना इसका जो उत्तर हो वो वापस मुझे भिजवा दे। वह लड़की धीरे धीरे उस लोटे को लेकर गई, किले पिताजी यूं कह रहा है इसका उत्तर दे, ब्राह्मण बाहर खड़ा है। परमात्मा कबीर जी ने उसमें एक लंबी सुई थी सी मोटी, वह डाल दी, लोहे की सुई डाल दी, और कहा बेटी वापस दे दे। अब सर्वानंद के पास वो लड़की धीरे धीरे लोटा लेकर आई वापस, केले ब्राह्मण। सर्वानंद ने पूछा क्या उत्तर दिया, लड़की ने कहा कि कुछ उत्तर नहीं दिया, पिताजी ने इसमें सुई डाल दी है लोहे की, मुझे नहीं मालूम क्या उत्तर दिया। वो अंदर आया, फिर कहने लगा कबीर तूने क्या उत्तर दिया मेरे प्रश्न का। परमात्मा ने कहा स्वामी जी विराजमान हो बैठो, अग नहीं नहीं मैं खड़ा रहूंगा, बैठे तब बेइज्जती होए, अग अच्छा खड़े रहो। क्या वो प्रश्न था आपका? सर्वानंद जी ने कहा कि मेरा प्रश्न ये था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा लबालब भरा है जल का, और इसमें जरा सा भी कोई एक बूंद पानी का नहीं समाएगा, वो बाहर पड़ेगा, यानी तेरा ज्ञान मेरे अंदर समाएगा नहीं, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं, वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। और मैंने ऐसे ऐसे अपनी माता से सर्वाजीत नाम रखवाना था, उसने कंडीशन रख दी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करके आऊं और फिर अपना नाम बदलवाऊं, मेरा इतना उद्देश्य है। अब तेरा ज्ञान मेरे में नहीं समाएगा, और मैं चारों वेदों का पुराणों का ज्ञाता हूं, मेरा यह संदेश था तेरे। परमेश्वर बोले मेरा उत्तर सुन ले क्या था, मेरा उत्तर ये है कि जैसे ही तेरे लोटे में और जल डाल देते बाहर गिरता, तो मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे मैंने सुई डाल दी इसमें, या सुई तेरी लोटे के तली में बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ज्ञान ऐसा है तेरे सारे थोथे ज्ञान ने बाहर काट देगा और तेरी छाती में बैठ जाएगा जाके, वो ज्ञान है मेरा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। अब सर्वानंद कहने लगा बोल तेरा क्या प्रश्न है। अभी इतने वहां पास के जो दुल्हे इकट्ठे हो गए, सारे घर से निकल निकल के आ गए, भाई आज कबीर के ना वार्ता हो गई, कबीर साहब के साथ छेड़छाड़ रखा करते हैं ब्राह्मणों से, परमात्मा बार बार छेड़ते थे सबको, वार्ताएं होती थी तो देखने आगे सब खड़े हो गए चारों तरफ बैठ गए। अब परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रश्न करता हूं, उत्तर दे महात्मा जी विद्वान पुरुष, कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और कौन शंकर का दादा है, हमको दे बता। अब सर्वानंद कहता ये तो अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये अजन्मा है, ये सर्वशक्तिमान है, देखो रे लोगो इसकी अकल मारी गई है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहा है। तब परमेश्वर ने कहा सर्वानंद आप शास्त्रार्थ करने आए हो तो शास्त्रों का आधार मानो। हां जी बोलो, कि देवी पुराण निकालो और तीसरा स्कंद निकालो, शिव पुराण निकालो, रुद्र संहिता निकालो और देखो उसमें क्या लिखा है। ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, ज्योति स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और उसने निकाली, पढ़ा, पढ़ कर देख लिया पात है तो यूं का तो, लेकिन बेइज्जती हुआ वृद्ध, और कोई पढ़ नहीं सकता, पढ़ ब्राह्मण सकते हो संस्कृत ने, और सब पता था उसको, कोई पढ़ नहीं सकता यहां पर। कहने लगा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और फिर और संस्कृत शुरू कर दी, कोई घोट रखे थे कोई उपनिषद, संस्कृत में बोलता रहा बोलता रहा, डटया नहीं डटया। तो उसमें सारे अनपढ़ दुलाए बैठे, बोले बाले, और वो संस्कृत बोले और सभी जो लावन ताली पीट दी, वाह सर्वानंद जीत गया जीत गया जीत गया, जो संस्कृत बोले वो जीत गया। अब ऐसे हार जीत होती थी विद्वानों की, अविद्वानों की प्रशंसा से। अब उन जुलाहों ने पता नहीं वो संस्कृत में बोल रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर दी, तो कबीर साहब बोले भाई ठीक है मैं हार गया तो जीत गया, बताओ और क्या चाहता है। सर्वानंद बोला ऐसे नहीं, लिख कर दे दे। अब सर्वानंद ने तो ऐसा काम कर दिया जैसे एक किसान का लड़का पढ़ा करता था छठी सातवीं, उसमें हमारे पुराने समय में इंग्लिश जो है छठी कक्षा से लगती थी, अंग्रेजी छठी कक्षा से पढ़ने लगते थे बच्चे। तो एक दिन रविवार के दिन वो अपने पिता के साथ खेतों में बैलगाड़ी में बैठा जा रहा था, आगे से अंग्रेज अधिकारी आ गया, कार ले रखी थी उसने, कोई रास्ता भूल गया था, उसने हाथ रुक दिया, किसान ने बैलगाड़ी रोक दी। उसने अंग्रेजी में पूछा भी मैंने उस गांव को जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं? तो किसान ने कहा कि बेटा अपने पुत्र से कि बेटा ये अपनी टोर दिखावा इंग्लिश बोल के अंग्रेजी, तो भी तो जानता है ना, सुना दे बोल के कि हमें भी आती है अंग्रेजी। उस लड़के ने सिक लीव सुना दी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब वो अंग्रेज तो पूछ रहा था गांव का रास्ता और वो किसान का लड़का सुना रहा है सिक लीव टू द हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव योर्स फेथफुली। अब उस अंग्रेज ने माथे माथ मारा कि पूछता रहा हूं रास्ता वे ऑफ विलेजर सुना रहा सिक लीव, माथे मारा मूर्खत बाला पड़ गया, वो चल पड़ा। किसान ने अपने बेटे की कमर थपथपाई, वाह बेटा वाह, तने अंग्रेज हरा दिया इंग्लिश बोल के। लड़का कहता पिताजी अभी तो मुझे माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, यो कार छोड़ के भाग जाता, वो सुन लेता था। तो ऐसा था वो सर्वानंद, परमात्मा प्रसन्न कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता, और वो सुना रहा है सिक लीव, और उसी को शाबाशी मिल गई, वाह 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 सर्वानंद जीत गया, वाह सर्वानंद जीत। अब परमात्मा के पास तो सारे हथियार थे। अब पंडित जी कहने लगा मैं जीत गया तू हार गया, परमात्मा बोले हाँ भाई मैं हार गया तू जीत गया, अब बता क्या चाहता है, कि लिख के दे दे, मेरी माँ वैसे नहीं मानेगी। परमेश्वर ने कहा भी मैं तो अक्षर ज्ञान है नहीं, मैं अनपढ़ हूं, तू लिख ले अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने लिख लिया, सर्वानंद शास्त्रार्थ में जीत गया, कबीर साहब पराजित हुआ, और नीचे अंगूठा लवा लिया कबीर साहब का, चल पड़ा। आके अपनी मां से कहने लगा ले माता, उसने जाते हाथ मार ली मेरे सामने, ये लिख के दे दिया। माता ने कहा बेटा पढ़ के सुना क्या लिखा है इसमें, उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया कबीर साहब विजयी हुए। अब उसकी मां ने कहा अरे तू हार का है तो ते? कहता नहीं माता जी मेरे लिखने में गलती रह गया, फिर लिखवा के लाता हूं, फिर लिखवा के ला। दूसरी बार फिर गया लिखवा लिया, लिखवा कर सही लावे वहां के पढ़े उल्टा पावे, सर्वानंद आ गया कबीर साहब जीत गए। अब सच्चाई तो थी जाए, उसकी माँ बोली रे तू नींद में है क्या? हाँ मां मैं नींद में हूं, अब के लिख के लाऊंगा ठीक। और फिर लिख के लाया, वही लिख के तो ठीक ही लाया था, कोई बालक थोड़ा ही था वो। और आके उसने सोचा कि बिजली पड़े है, माँ के पास जाते ही ये उलट सुलट हो जाए। उस घर में प्रवेश करते करते उस पर नजर नहीं हटाई, माता जी सुनाओ सुनाओ, कहा भाई सुना, वो सुनाने लगे वो अक्षर चेंज हो गए, उसकी आंखें का गए, वो तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी माँ बोली रे बोलता को ना पढ़े, बैठ गया नो का नो, वो तो एकदम अचंभित हो गया कि वो तो पहले तो सोचता था गलती लागी शायद मेरे, तरह आंखें का गए उलट पुलट होते दिखे, पेट पकड़ के बैठ गया, कलेजा पकड़ लिया। उसकी माँ बोली रे क्या हो गया बेटा बोल, वो तो है विद्वान है। तब उसका पसीना आ गया, पानी पिया एक गिलास खूब, और तब उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहे हैं वह, और तेरा कल्याण हो जाए बेटा, मेरी आत्मा रो रही है काफी दिनों से, तने कैसा का पता नहीं वेदों और गीता और पुराणों का, हर विद्वान पाक रह क्यों दुनिया को भ्रमित किए बैठा। सिर पकड़ के बैठ गया, उन्होंने बोला माता जी सही कह रहे हो आप, वो तो विद्वान के वो तो भगवान आ रहे हैं, माता सारे वेदों सदग्रंथों को जानते हैं, लेकिन मैं अपने अभिमान वसमान नहीं रहा था माता जी, आज इस लीला ने मेरा जो है ना भ्रम तोड़ दिया, और माता मुझे उपदेश दिला दो, मुझे शर्म लगेगी अकेले के जाते हैं, आप मुझे साथ ले चलो। अब सर्वानंद को उसकी माँ लेकर गई, गुरुदेव के चरणों में डाल दिया, बेटा मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा, नाम ले लिया। अब उसके बाद बाकी ब्राह्मण वर्ग उस सर्वानंद के विरोधी हो गए, तन तन नाक कटवा दी, इसको जाते घेर दो, देख काल के दूतों का कैसा खेल। लेकिन सर्वानंद नहीं माना उनकी, ना उनकी माँ मानी, जाते घेर कितत घेर दो हमने, अब तो भगवान मिल गया। तो परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ, और नहीं रे ऐसा दो। बोलो सतगुरु देव सत सहेब।